इस्तस्ना चौथा बाब। और अब ए इसराइलियो, जो आयन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूं, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको देता हूं मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फगोर के सबब से किया वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगोर की पैरवी की खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने तुमको आयन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आयन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अकलमंद और दानिश्वर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावंद हमारा खुदा कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आयन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर हौरेब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए और वो पहाड़ आग से दहक रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुंचती थी और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी, और खुदावन ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फक्त आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के दसों अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की दो लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आयन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर हौरेब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो जिसकी शबी किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रींगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो, या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजरामे फल्क यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है ताकि तुम उसकी मेरास के लोग ठहरो जैसा आज जाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यर्दन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यर्दन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो ताना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गय्यूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़कर किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यर्दन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे और खुदावन तुमको कौमों में तित्तर बित्तर करेगा और जिन कौमों के दरमियान खुदावन तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे जो ना देखते ना सुनते ना खाते ना सूंघते हैं। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है, वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया तब से शुरू करके तू उन गुजरे अय्याम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई? क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है? या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मौजजों और जंग और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक माजरों के वसीला से उनको अपनी खातिर बरगजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए। ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने के खुदावन ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसने अपनी आवाज आसमान से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई और तूने उसकी बातें आग के बीच में से आती हुई सुनी। और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया ताकि तेरे सामने से उन कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं दफा करे और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए और उसे तुझको मीरास के तौर पर दे जैसा आज के दिन जाहिर है। पस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो तू उसके आयन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूं मानना ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। फिर मूसा ने यर्दन के पार मशरिक की तरफ तीन शहर अलग किए ताकि ऐसा खूनी जो अनजाने बगैर कदीमी अदावत के अपने पड़ोसी को मार डाले वो वहां भाग जाए और इन शहरों में से किसी में जाकर जीता बच रहे। यानी रोबीनियों के लिए तो शहर बसर हो जो तराई में बियाबान के बीच वाकया है और जदियों के लिए शहर रामात जो जलाद में है और मनस्सियों के लिए बासन का शहर जोलान। ये वो शरीयत है जो मूसा ने बनी इसराइल के आगे पेश की। यही वो शहादतें और आयन और अहकाम हैं जिनको मूसा ने बनी इसराइल को उनके मिस्र से निकलने के बाद यर्दन के पार उस वादी में जो बैते फगोर के मुकाबिल है कह सुनाया, यानी अमोरियों के बादशाह सय्योन के मुल्क में जो हसबोन में रहता था, जिसे मूसा और बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मारा और फिर उसके मुल्क को और बासन के बादशाह औज के मुल्क को अपने कब्जा में कर लिया। अमूरियों के इन दोनों बादशाहों का ये मुल्क यर्दन पार मशरिक की तरफ एरोएर से जो वादिये अरनोन के किनारे वाकया है कोहे सय्योन तक जिसे हरमोन भी कहते हैं फैला हुआ है। इसी में यर्दन पार मशरिक की तरफ मैदान के दरिया तक जो पिसगा के ढाल के नीचे बहता है वहां का सारा मैदान शामिल है। इस्तस्ना चौथा बाब। और अब ए इसराइलियो जो आयन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूं तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको देता हूं मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फगोर के सबब से किया वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगोर की पैरवी की खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने तुमको आयन और अहकाम सिखा दिए हैं ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आयन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अकलमंद और दानिश्वर है क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावंद हमारा खुदा कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आयन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना खसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर हौरेब में खड़ा हुआ क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए और वो पहाड़ आग से दहक रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुंचती थी और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी और खुदावन ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी फक्त आवाज ही आवाज सुनी और उसने तुमको अपने अहद के दसों अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की दो लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आयन और अहकाम सिखाऊं ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर हौरेब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो जिसकी शबी किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रींगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजरामे फल्क यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है ताकि तुम उसकी मेरास के लोग ठहरो जैसा आज जाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यर्दन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावन तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यर्दन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो, ताना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ, और अपने लिए किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो, जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गय्यूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़कर किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यर्दन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे, और खुदावन तुमको कौमों में तितर बितर करेगा, और जिन कौमों के दरमियान खुदावन तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे, और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते ना सुनते ना खाते ना सूंघते हैं। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी, तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है, वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया तब से शुरू करके तू उन गुजरे अय्याम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ, और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई? क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है? या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मोजज़ों और जंग और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक माजरों के वसीला से उनको अपनी खातिर बरगजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए? ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने के खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसने अपनी आवाज आसमान से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे, और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई और तूने उसकी बातें आग के बीच में से आती हुई सुनी। और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी, इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया, ताकि तेरे सामने से उन कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं दफा करे और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए और उसे तुझको मीरास के तौर पर दे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो तू उसके आयन और अहकाम को, जो मैं तुझको आज बताता हूं, मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। फिर मूसा ने यर्दन के पार मशरिक की तरफ 3 शहर अलग किए, ताकि ऐसा खूनी जो अनजाने बगैर कदीमी अदावत के अपने पड़ोसी को मार डाले वो वहां भाग जाए और इन शहरों में से किसी में जाकर जीता बच रहे। यानी रोबीनियों के लिए तो शहर बसर हो, जो तराई में बियाबान के बीच वाकया है, और जदियों के लिए शहर रामात, जो जलाद में है, और मनस्सियों के लिए बासन का शहर जोलान। ये वो शरीयत है जो मूसा ने बनी इसराइल के आगे पेश की। यही वो शहादतें और आयन और अहकाम हैं जिनको मूसा ने बनी इसराइल को उनके मिस्र से निकलने के बाद यर्दन के पार उस वादी में, जो बैते फगोर के मुकाबिल है, कह सुनाया। यानी अमोरियों के बादशाह सय्योन के मुल्क में, जो हसबोन में रहता था, जिसे मूसा और बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मारा, और फिर उसके मुल्क को और बासन के बादशाह औज के मुल्क को अपने कब्जा में कर लिया। अमूरियों के इन दोनों बादशाहों का ये मुल्क यर्दन पार मशरिक की तरफ एरोएर से, जो वादिये अर्नोन के किनारे वाकया है, कोहे सय्योन तक, जिसे हरमोन भी कहते हैं, फैला हुआ है। इसी में यर्दन पार मशरिक की तरफ मैदान के दरिया तक, जो पिसगा के ढाल के नीचे बहता है, वहां का सारा मैदान शामिल है।